एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करें जो आजकल हर तरफ छाया हुआ है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, हेट स्पीच यानी नफरती भाषा।
हम सब ने इसे देखा है, शायद महसूस भी किया है, है ना?
बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ बुरे शब्द नहीं है, इसका असर काफी गहरा होता है, व्यक्तियों पर भी और समाज पर भी।
हाँ, और इसे गुत्थी को थोड़ा समझने के लिए हम आज कैटलिन रिंग कार्लसन के काम पर ध्यान देंगे। उनके रिसर्च इस बात पर रोशनी डालती है कि जो दो जरूरी चीजें हैं, बोलने की आजादी और समाज को नफरत से बचाने की जरूरत, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए।
जी, और खासकर आज के डिजिटल जमाने में ये सवाल तो और भी पेचीदा हो गया है। सही कहा, तो हमारा मकसद यहाँ कोई साइड लेना नहीं है, बल्कि इस मुश्किल विषय की अलग अलग परतें खोलना है। हम देखेंगे कि कार्लसन क्या कहती हैं, अलग अलग नजरिए क्या हैं, ताकि हम सब महज पक्ष विपक्ष से आगे बढ़कर सोच सकें।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो पहले ये बताइए, ये कैटलिन रिंग कार्लसन है कौन और उनका काम क्यों अहम है इस विषय में?
जी, कैटलिन रिंग कार्लसन सिएटल यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनकी जो विशेषज्ञता है वो मीडिया कानून, पॉलिसी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय, इन सब क्षेत्रों में है, और खास तौर पर डिजिटल मीडिया एथिक्स पर उनका काफी काम है।
अच्छा, और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा कि वो कम्युनिकेशन की प्रोफेसर है, तो वो इसे सिर्फ कानून के नजरिए से नहीं देखती है ना?
सही, वो इसे एक संचार कार्य, मतलब एक कम्युनिकेटिव एक्ट के रूप में देखती हैं, यानी एक ऐसी बातचीत जिसका असल दुनिया में लोगों पर ठोस असर पड़ता है। वो सिर्फ नियमों या कानून की बात नहीं करती, बल्कि ये समझने की कोशिश करती हैं कि शब्द असल में कैसे चोट पहुंचाते हैं।
तो उनका अप्रोच काफी मल्टीडिसिप्लिनरी लगता है।
हाँ बिल्कुल, वो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तकनीक और कानून, इन सबको जोड़कर इस मुद्दे को देखती हैं, और उन्होंने इस पर काफी शोध किया है कि कैसे ये जो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सोशल मीडिया, इन्होंने हमारी बातचीत के तरीकों को ही बदल दिया है।
तो एक तरह से वो थ्योरी और प्रैक्टिकल पॉलिसी के बीच का पुल है।
जी कह सकते हैं, उनका काम अकादमिक सिद्धांतों और व्यवहारिक नीतिगत विचारों दोनों को साथ लाता है।
अच्छा, तो अगर हमें उनके काम का या मान लीजिए उनकी किताब का मुख्य सार समझना हो, एक निचोड़, तो वो क्या होगा?
देखिए, उनका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि हेट स्पीच से निपटने के लिए हमें जो सीधी लड़ाई है, न पूरी आजादी बनाम पूरी सेंसरशिप, इससे आगे बढ़ना होगा। मामला इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है,
मतलब एक ज्यादा सूक्ष्म बारीक नजरिए की जरूरत है।
बिल्कुल, एक बहुआयामी दृष्टिकोण। वो ये सवाल पूछती हैं कि एक लोकतांत्रिक समाज, खासकर अमेरिका जैसा देश जहां बोलने की आजादी को बहुत बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, वो नफरती भाषा से होने वाले नुकसान को कैसे कम कर सकता है बिना अपने मूल सिद्धांतों को तोड़े। ये एक बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल है।
हाँ, ये तो है। तो उनकी किताब इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढती है? क्या सफर रहता है पाठक का?
किताब एक तरह से हमें एक यात्रा पर ले जाती है। शुरुआत होती है परिभाषा की चुनौतियों से, कि हेट स्पीच कहना आसान है पर इसे परिभाषित करना कितना मुश्किल है।
अच्छा,
फिर वो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों जैसे यूरोप या कनाडा के कानूनी फर्क को समझाती हैं, और ये फर्क काफी बड़ा है।
हाँ, इस पर हम आगे बात करेंगे।
जी, उसके बाद किताब फोकस करती है नफरती भाषा से होने वाले असल नुकसान पर, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नुकसान। ये सिर्फ भावनाएं आहत होने से कहीं ज्यादा है।
और फिर डिजिटल दुनिया का एंगल आता होगा।
बिल्कुल, डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया वगैरह, उनकी क्या भूमिका है, वो कैसे इस नफरत को बढ़ाते हैं, इस पर भी विस्तार से बात होती है।
और क्या वो सिर्फ समस्या बताती है या समाधान भी?
नहीं, अंत में समाधानों पर भी विचार होता है, और वो सिर्फ कानूनी रोक टोक तक सीमित नहीं है। काउंटर स्पीच, मीडिया साक्षरता, प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी, इन जैसे कई उपायों पर चर्चा होती है।
तो उनका लक्ष्य पाठकों को सोचने के लिए एक ढांचा देना है, ताकि वो सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़ सकें।
एग्जैक्टली।
चलिए, अब कुछ खास बिंदुओं पर थोड़ी और गहराई में जाते हैं। आपने कहा परिभाषा की चुनौती, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। कोई एक सर्वमान्य परिभाषा क्यों नहीं बन पाती हेट स्पीच की?
हाँ, ये एक बड़ा पेच है। कार्लसन यही समझाती हैं कि खासकर अमेरिका में हेट स्पीच कानूनी शब्द से ज्यादा एक सामाजिक राजनीतिक शब्द बन गया है। परिभाषा इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट पर, मतलब संदर्भ पर बहुत निर्भर करती है।
संदर्भ मतलब?
जैसे कि कहने वाले का इरादा क्या था, सुनने वाले पर उसका असर क्या हुआ, किसके बारे में कहा जा रहा है, नस्ल, धर्म, लिंग, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और ये भी कि बोलने वाले और जिसके बारे में बोला जा रहा है उनके बीच शक्ति का संतुलन कैसा है। ये सारी चीजें परिभाषा को प्रभावित करती हैं।
अच्छा, और कोई भी परिभाषा बनाने के अपने खतरे भी तो होंगे, अगर बहुत ढीली परिभाषा हो तो?
हाँ, अगर परिभाषा बहुत व्यापक हुई तो डर रहता है कि कहीं वैध आलोचना, व्यंग्य या मजाक भी हेट स्पीच के दायरे में ना आ जाए। बोलने की आजादी पर अनावश्यक रोक लग सकती है।
और अगर बहुत संकीर्ण, बहुत टाइट परिभाषा हुई तो?
कि पहला संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट, वो बोलने की आजादी को बहुत ज्यादा सुरक्षा देता है। मूल सिद्धांत यह है कि सरकार कंटेंट या नजरिए के आधार पर भाषण को नियंत्रित नहीं कर सकती। मतलब सरकार ये नहीं कह सकती कि ये विचार बुरा है इसलिए इसे बैन करो।
इसमें कुछ खास अदालती मामले भी हैं शायद?
जी, दो बहुत अहम हैं। एक है ब्रैंडनबर्ग वी ओहायो 1969। इसने एक स्टैंडर्ड सेट किया जिसे कहते हैं निकटस्थ गैर कानूनी कार्रवाई या इमिनेंट लॉलेस एक्शन का मानक।
इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में?
इसका मतलब है कि हिंसा भड़काने वाला भाषण भी तब तक सुरक्षित है जब तक कि उसका इरादा तुरंत उसी वक्त गैर कानूनी कार्यवाही यानी हिंसा भड़काना ना हो और ऐसा होने की संभावना भी ना हो। ये बार बहुत ऊंचा सेट किया गया है। ज्यादातर नफरती बातें इस टेस्ट को पास कर लेती हैं यानी सुरक्षित रहती हैं।
अरे, तो मतलब बहुत कुछ कहा जा सकता है कानूनी तौर पर?
हाँ। और दूसरा केस है RAV सिटी ऑफ सेंट पॉल 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार खास तौर पर नापसंद विषयों जैसे नस्ली नफरत के आधार पर भाषण पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, जबकि दूसरे विवादास्पद विषयों पर ना लगाए। इसे कहते हैं व्यू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन यानी नजरिए के आधार पर भेदभाव। सरकार ये नहीं चुन सकती कि कौन सा बुरा नजरिया ज्यादा बुरा है।
तो नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में जिसे आम लोग हेट स्पीच कहते हैं उसका बड़ा हिस्सा कानून की नजर में प्रोटेक्टेड है।
बिल्कुल, ये बात बहुत से लोगों को शायद हैरान करे लेकिन ये वहाँ की कानूनी हकीकत है।
लेकिन दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं है ना? यूरोप, कनाडा में क्या अलग है?
हाँ, वहाँ मॉडल अलग है। वहाँ मानवाधिकार समझौतों का ज्यादा असर है, जैसे ICCPR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वो मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, पर साथ ही मानवीय गरिमा, समानता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
तो वहाँ संतुलन अलग तरह से साधा जाता है।
जी, वहाँ नफरत, भेदभाव या हिंसा भड़काने वाले भाषणों पर ज्यादा प्रतिबंधों की गुंजाइश है। जैसे जर्मनी में होलोकास्ट का इनकार करना एक कानूनी अपराध है। तो कार्लसन ये साफ करती हैं कि अमेरिकन अप्रोच एक चुनाव है, कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं। हर देश अपने इतिहास और मूल्यों के हिसाब से यह संतुलन तय करता है।
ये कानूनी पहलू तो है, पर कार्लसन इस बात पर भी जोर देती हैं कि नफरती भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, इसका असल नुकसान होता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या असर देखा गया है?
शोध बताते हैं कि इसका असर काफी गहरा हो सकता है। चिंता, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन, यहाँ तक कि PTSD जैसे लक्षण भी देखे गए हैं उन लोगों में जिन्हें लगातार निशाना बनाया जाता है।
PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
शब्दों से?
हाँ, जब हमला लगातार हो और पहचान से जुड़ा हो। इसके अलावा स्टीरियोटाइप थ्रेट जैसी चीजें, मतलब अगर आपके समूह के बारे में कोई नकारात्मक धारणा बनी हुई है तो आप हमेशा एक दबाव महसूस करते हैं कि कहीं आप उस धारणा को सच ना साबित कर दें। इससे आपका प्रदर्शन प्रभावित होता है।
और माइनॉरिटी स्ट्रेस भी शायद बढ़ता होगा।
बिल्कुल, अल्पसंख्यक तनाव। और जब भाषा आपको अमानवीय करती है, आपको इंसान से कमतर बताती है, तो उसका मनोवैज्ञानिक जख्म बहुत गहरा होता है।
और ये असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता होगा, पूरे समूह पर भी असर पड़ता होगा।
जी हाँ, ये पूरे समूह को समाज में नीचे धकेलता है, उन्हें कमजोर बनाता है, ये समाज में पहले से मौजूद नकारात्मक रूढ़ियों को और मजबूत करता है। इससे फिर आवास, रोजगार, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भेदभाव को सही ठहराना आसान हो जाता है, एक डर का माहौल बनता है।
और क्या इसका असर हमारे लोकतंत्र पर भी पड़ता है?
निश्चित रूप से, ये सामाजिक एकजुटता को कमजोर करता है, लोकतांत्रिक विमर्श को नुकसान पहुंचाता है। कैसे? जब कुछ समूहों को लगातार निशाना बनाया जाता है तो वो पब्लिक डिबेट से पीछे हट जाते हैं, अपनी आवाज उठाने से डरते हैं। इसे कार्लसन डिस्कर्सिव एक्सक्लूजन कहती हैं, यानी बातचीत के दायरे से ही बाहर कर देना।
तो वो जो विचारों का बाजार वाली बात है, उसमें कुछ आवाजें आ ही नहीं पाती।
बिल्कुल, वो बाजार सबके लिए खुला नहीं रह पाता। और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, कभी कभी ये नफरत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, ये वास्तविक दुनिया की हिंसा का कारण भी बन सकती है।
शार्लट्सविल रैली इसका एक दुखद उदाहरण है।
अब इसमें डिजिटल दुनिया का एंगल जोड़ते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने इस समस्या को कैसे बदल दिया है? ये सिर्फ एक नया मंच है या इसने खेल के नियम ही बदल दिए हैं?
कार्लसन का तर्क है कि इसने खेल के नियम बदल दिए हैं। ये सिर्फ एक नया मंच नहीं है, कई कारक हैं। पहला तो है स्केल और स्पीड, फैलाव और रफ्तार,
मतलब कितनी तेजी से और कितने लोगों तक पहुंचता है।
हाँ, एक नफरती ट्वीट या पोस्ट सेकेंडों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, पहले ऐसा संभव नहीं था। दूसरा है गुमनामी।
ऑनलाइन पहचान छुपाना आसान है
जी, और इससे कुछ लोगों को ज्यादा जहरीली और चरमपंथी बातें कहने की हिम्मत मिल जाती है बिना पकड़े जाने के डर के।
और तीसरा, शायद सबसे जटिल, वो एल्गोरिदम वाली बात।
हाँ, एल्गोरिदमिक एम्प्लीफिकेशन, ये बहुत चिंताजनक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम अक्सर ऐसी सामग्री को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं जिस पर लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या नफरत, क्योंकि एंगेजमेंट उनका बिजनेस मॉडल है।
तो वो अनजाने में ही नफरत को ज्यादा फैला सकते हैं।
बिल्कुल, इससे इको चैम्बर बनते हैं जहां आपको सिर्फ अपने जैसी सोच वाले लोग दिखते हैं, और रेडिकलाइजेशन पाइपलाइन बन सकती है जहां लोग धीरे धीरे और ज्यादा चरमपंथी विचारों की ओर बढ़ते जाते हैं।
और इन प्लेटफॉर्म्स के लिए ये तय करना कि क्या हटाएं क्या नहीं, ये भी तो मुश्किल होगा।
बहुत मुश्किल। इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म गवर्नेंस की चुनौतियां। अरबों पोस्ट रोजाना, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भ, इसमें कंसिस्टेंट तरीके से मॉडरेशन करना लगभग नामुमकिन सा है। अक्सर उनके फैसलों में असंगति दिखती है।
ये समस्या यूनिवर्सिटी कैंपस में भी काफी दिखती है ना? वहां भी अक्सर बोलने की आजादी और एक सुरक्षित समावेशी माहौल बनाने के बीच तनाव रहता है।
जी बिल्कुल, येल, बर्कले जैसे कई उदाहरण हैं, वहां ये बहस बहुत तीखी हो जाती है। कार्लसन जैसे विचारक सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बजाय शैक्षिक प्रतिक्रियाओं पर ज्यादा जोर देते हैं। संवाद और समझ को बढ़ावा देना, इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना,
और आगे देखते हुए नई तकनीकें जैसे AI, VR, डीप फेक, ये क्या नई चुनौतियां ला सकती हैं?
ये चुनौतियां और बढ़ा सकती हैं। AI नफरत पहचानने में मदद तो कर सकता है, पर AI खुद भी इंसानी पूर्वाग्रहों को सीख सकता है और उन्हें बढ़ा सकता है। VR या AR में उत्पीड़न के नए तरीके आ सकते हैं, और डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तो बहुत खतरनाक तरीके से झूठी नफरत फैलाई जा सकती है।
बापरे, तो मतलब हमें लगातार चौकन्ना रहना होगा और नीतियां बनानी होंगी।
हाँ, प्रोएक्टिव नीति विकास और लगातार शोध की जरूरत होगी।
ठीक है, तो इस पूरे गहरे बातचीत से कुछ मुख्य बातें, मुख्य संदेश क्या निकलते हैं, अगर हमें कुछ पॉइंट्स में समेटना हो?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश ये है कि ये जो दो चरम विकल्प हैं, पूरी आजादी या पूरी रोक, ये दोनों ही अपर्याप्त हैं। हमें संदर्भ, इरादा, प्रभाव, माध्यम, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक सूक्ष्म समझ बनानी होगी।
सिंपल जवाब नहीं है। दूसरा पॉइंट?
दूसरा, नफरती भाषा लोकतंत्र को चोट पहुंचाती है। ये सिर्फ कुछ लोगों की भावनाओं का सवाल नहीं है, ये आवाजों को दबाती है, समान भागीदारी को कमजोर करती है, ये उस विचारों के बाजार में कुछ आवाजों को घुसने ही नहीं देती।
तीसरा पॉइंट शायद तकनीक से जुड़ा है।
हाँ, तीसरा, डिजिटल तकनीक ने इस समस्या को मौलिक रूप से बदल दिया है। ये सिर्फ पुराना मुद्दा नए कपड़ों में नहीं है, इसलिए पुरानी रणनीतियां काफी नहीं है। हमें नए समाधान चाहिए जो प्लेटफॉर्म डिजाइन और एल्गोरिदम को भी ध्यान में रखें।
चौथा,
संदर्भ बहुत मायने रखता है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग कह सकते हैं। ये तय करने में कि कोई चीज नफरती है या नहीं, और खासकर ये तय करने में कि उस पर प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, कठोर नियमों की बजाय स्थिति के अनुसार विश्लेषण जरूरी है।
पांचवा क्या होगा?
पांचवा, नीतियां सिर्फ अमूर्त सिद्धांतों पर नहीं बल्कि ठोस शोध पर आधारित होनी चाहिए। मनोविज्ञानिक, समाजशास्त्रीय शोध जो बताते हैं कि नफरती भाषा वास्तव में लोगों और समुदायों को कैसे प्रभावित करती है, हमें उस सबूत का इस्तेमाल करना चाहिए।
और आखिरी, छठा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश,
वो ये कि समाधान सिर्फ कानून या सेंसरशिप में नहीं है, हमें एक बहुस्तरीय प्रतिक्रिया चाहिए। काउंटर स्पीच यानी नफरत का जवाब ज्यादा और बेहतर भाषण से देना, मीडिया और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, टेक प्लेटफॉर्मों से जिम्मेदारी की मांग करना, और सामुदायिक स्तर पर नफरत के खिलाफ एक माहौल बनाना, ये सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है।
ये तो बहुत अहम बातें हैं। कार्लसन के काम से कुछ खास विचार या कोट्स भी हैं जो याद रखने लायक हो?
हाँ, कई हैं। एक तो ये कि सवाल यह नहीं है कि नफरती भाषा नुकसान पहुंचाती है या नहीं, शोध ने यह निश्चित रूप से स्थापित कर दिया है, बल्कि यह है कि समाज उस नुकसान पर कैसे प्रतिक्रिया दे, साथ ही वैध अभिव्यक्ति के लिए मजबूत सुरक्षा बनाए रखे।
ये बहुत पावरफुल है। मतलब बहस अब क्या नुकसान होता है से हटकर हम क्या करें पर आनी चाहिए।
बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है, अमेरिकी कानूनी प्रणाली में जिसे आम बोलचाल में हेट स्पीच कहा जाता है, उसका अधिकांश हिस्सा संवैधानिक रूप से सुरक्षित है, जिससे इसे प्रतिबंधित करने के कानूनी रास्ते बहुत कम रह जाते हैं।
ये अमेरिकी संदर्भ की वास्तविकता को साफ करता है और बताता है कि कानून से परे सोचना क्यों जरूरी है।
जी। तीसरा, तकनीक पर। डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने केवल अभिव्यक्ति के पुराने रूपों के लिए नए स्थान नहीं दिए हैं, उन्होंने सार्वजनिक विमर्श की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया है, जिसे हमारे कानूनी और सामाजिक ढांचे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं।
मतलब तकनीक का असर हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा और बुनियादी है।
हाँ। और चौथा, समाधान पर। नफरती भाषा का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए कानूनी प्रतिबंधों के अलावा कई तरह के समाधानों की जरूरत है, जिसमें संगठित काउंटर स्पीच, व्यापक डिजिटल साक्षरता शिक्षा और टेक प्लेटफॉर्मों पर जिम्मेदारी लेने के लिए सार्थक दबाव शामिल है।
ये वही बहुआयामी दृष्टिकोण की बात दोहराता है। ये सारे पॉइंट सोचने पर मजबूर करते हैं।
जी।
अच्छा, तो ये सब अकादमिक और नीतिगत बातें हुई, पर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या मतलब है? एक आम नागरिक के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर या एक अभिभावक के तौर पर हम क्या कह सकते हैं?
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आम नागरिकों के लिए पहला कदम तो शायद अपनी डिजिटल साक्षरता बढ़ाना है। ऑनलाइन जो भी हम देखते सुनते हैं उसे थोड़ा आलोचनात्मक नजरिए से देखें, ये समझें कि एल्गोरिदम हमें क्या और क्यों दिखा रहे हैं।
और काउंटर स्पीच का क्या मतलब है आम इंसान के लिए? क्या सबसे भिड़ जाना?
नहीं, जरूरी नहीं। काउंटर स्पीच का मतलब हो सकता है नफरती कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करना, जो लोग निशाना बन रहे हैं उनका सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर समर्थन करना, सकारात्मक और तथ्यात्मक जानकारी फैलाना, कभी कभी सिर्फ चुप न रहना भी काउंटर स्पीच का एक रूप है।
अच्छा, और शिक्षकों और अभिभावकों के लिए क्या सलाह होगी?
वो बच्चों से इस बारे में बात कर सकते हैं, उन्हें ऑनलाइन दुनिया के खतरों और अवसरों के बारे में सिखा सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब है और इसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं। मीडिया साक्षरता बहुत जरूरी है। उन्हें सिखाएं कि अगर वो कुछ आपत्तिजनक या नफरती देखें तो क्या करें, किससे बात करें।
और टेक कंपनियों की क्या जिम्मेदारी बनती है?
उन्हें अपने प्लेटफॉर्म के डिजाइन में जिम्मेदारी लानी होगी। सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के बजाय उपयोगकर्ता की भलाई को प्राथमिकता देनी होगी। कॉन्टेंट मॉडरेशन की नीतियां ज्यादा पारदर्शी और सुसंगत बनानी होंगी, और उनमें अलग अलग सांस्कृतिक बारीकियों का ध्यान रखना होगा। उन पर बाहरी दबाव बनाए रखना भी जरूरी है।
नीति बनाने वालों के लिए क्या सबक है?
उनके लिए सबक है कि नीतियां बनाते समय शोध और सबूतों का इस्तेमाल करें, अलग अलग तरह के नुकसानदेह भाषणों में फर्क करें, सिर्फ सजा पर ध्यान देने की बजाय शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक प्रयासों का भी समर्थन करें।
और समुदाय के स्तर पर हम अपने आस पड़ोस, अपने समाज में क्या कर सकते हैं?
हम सामूहिक कार्रवाई कर सकते हैं, बातचीत के साझा मानक बना सकते हैं कि हमारे समुदाय में किस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है। नफरत के शिकार लोगों की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। एक मजबूत सामाजिक ताना बाना बनाना जो नफरत को खारिज करे।
ये सब करने से ही शायद कुछ फर्क पड़ेगा।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे बड़ा सबक क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि नफरती भाषा जैसी जटिल समस्या का कोई आसान सिंगल पॉइंट समाधान नहीं है। हमें सरल जवाबों की तलाश छोड़नी होगी और हर स्थिति को उसकी बारीकी में, उसके संदर्भ में समझने की कोशिश करनी होगी, और समाधान बहुस्तरीय ही होगा।
मेरे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण रही कि अमेरिकी कानूनी ढांचा, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना ऊंचा दर्जा देता है, वो भी इस समस्या से निपटने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है। कानून एक हिस्सा है पर पूरी कहानी नहीं। हमें सामाजिक, शैक्षिक और तकनीकी समाधानों पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि नफरती भाषा का नुकसान सिर्फ काल्पनिक या भावनात्मक नहीं है, ये वास्तविक है, मापने योग्य है और व्यवस्थागत है। ये लोगों को चुप कराता है, समुदायों को हाशिए पर धकेलता है और हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। इस नुकसान को गंभीरता से लेना होगा।
और हाँ, आखिर में ये कि जिम्मेदारी साझा है, ये सिर्फ सरकार का या सिर्फ टेक कंपनियों का काम नहीं है। हम सब की भूमिका है, एक नागरिक के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में, एक समुदाय के सदस्य के रूप में। हम क्या बोलते हैं, क्या शेयर करते हैं और किस पर चुप रह जाते हैं, इन सब का असर पड़ता है।
बिल्कुल। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल, जैसे जैसे AI, VR, डीप फेक जैसी तकनीकें और विकसित होंगी, नफरत फैलाने और उत्पीड़न के तरीके और भी जटिल और शायद ज्यादा प्रभावी होते जाएंगे। क्या हम समाज के तौर पर इन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचना होगा।
जरूर, बहुत ही विचार उत्तेजक चर्चा रही है।
जी,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।